गुरुवार तारीख 17 नवंबर 2011 लेक्चर नंबर 1 5 समवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आययां नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहूणं जं जस्य जम्मि देशे जेन विहानेन जम्मि कालम्नि नादं जिनेन नियदं जम्मं वा अहवमरणं वा संतस्तम्मि देशे तेन विहानेन तम्मि कालम्नि कोशकदिवारे दुम् इन्दो वा सह जिनेन्दो वा एवं जो निश्चयदो जानदि दौवानि सौपच्छाये शोषदिच्छि शुद्धो जो संपदि सोहुकुदिच्छि। वस्तु व्यवस्था संबंधी ये जो हमने अभी 3 गाथाएं देखी है तो ये ऐसा ही क्यों है इसका निर्णय करने के लिए हमें जिनागम के कुछ सिद्धांत जानकर वो ऐसे ही है इसका निर्णय करना चाहिए। उसमें से 5 समवायों का अपना विषय चल रहा है। किसको कहना 5 समवाय याद है? हाँ, यानी वो यानी कौन से नहीं पूछा 5 समवाय कहना किसको?
जो कार्य उन्होंने किया।
हाँ, बहुत अच्छा। उसमें जो कारण है अकेला निमित्त नहीं कहना, क्योंकि उसमें 4 कारण तो उपादान के हैं और 1 कारण निमित्त वाला है। तो कार्य जब जब होता है, कब होता है? तो हर समय होता है, तब वहाँ 5 कारणों की उपस्थिति होती ही है। उसको कहेंगे 5 समय। समवाय ने समूह, इन कारणों के समूह को ही 5 समवाय कह दिया। उसमें से हमने स्वभाव की बात की थी और निमित्तों की बात अपनी चल रही थी। और यहाँ हम पेज नंबर 65 पर हमने कल पढ़ा था, 63 पर गुजराती में निकालना, क्योंकि हमने ये देखी बात थी कि सामने पुस्तक है इसलिए ज्ञान हुआ ऐसा मानता है जीव, गुरु से ज्ञान हुआ। कहना अलग बात है, मानना अलग बात है। कौन से पेज पर है? 64 पर। हाँ, गुजराती 64 और हिंदी में 63 का लास्ट पैराग्राफ है। तो सामने पुस्तक है इसलिए ज्ञान हुआ, गुरु से ज्ञान हुआ, प्रकाश है इसलिए ज्ञान हुआ, अंधेरे में कैसे हो सकता है? हाँ, मुंह में गुलाब जाम रखा इसलिए उसकी मिठास का ज्ञान हुआ, चश्मा लगाने से ज्ञान हुआ। ऐसी ही प्रायः यानी इन जनरली अनेक लोगों की मान्यता दिखाई देती है। कथन तो ऐसा होगा भले, परंतु मान्यता ऐसे ही रखी कि ये निमित्तों से ही मुझे ये हमारा कार्य हो गया। तुम कहोगी, अभी इस पर हम क्या आपस में बात करेंगे? तो ये तो प्रत्यक्ष में इसी तरह पाई जाती है, अनुभव में आती है, तो फिर हम उन्हें जरूर मानेंगे ही। तुम उनका क्यों निषेध करती हो? क्या तुम्हें गुलाब जाम खाए बिना ही उसकी मिठास का पता चलता है? नहीं ना, ये ध्येय से ज्ञान नहीं हुआ। वो गुलाब जाम रखा इसलिए ज्ञान हुआ क्या नहीं हुआ? तो प्रश्न पूछे उल्टा, कि तुम्हें बिना खाए ही ज्ञान होता है क्या उसका? समझ में है ना, मान्यता कहाँ है? हाँ, यहाँ रखने के न रखने पर उसका ज्ञान हो रहा है, परंतु उसी से ज्ञान होना ये मान्यता कैसी है? निमित्त से कार्य होता है ये मान्यता है। तो बेटी पूछ रही है कि क्या तुम्हें बिना खाए गुलाब जामुन का ज्ञान होता है क्या? क्योंकि निमित्त से कार्य होते हुए विश्व में दिखाई दे रहा है, इसलिए हर जीव की मान्यता ऐसी ही है कि निमित्त से ही कार्य होता है। तो निमित्त नहीं था तब क्यों नहीं हुआ, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति में पूज्य श्री कांजी स्वामी के अनंत उपकार है, उन्हीं के उपदेश से यह मार्ग प्राप्त हुआ है, यह बात तुम ही बारंबार बताती हो और फिर एक बार कहती हो निमित्त से कुछ नहीं होता, ये उल्टा पुल्टा लगता है लोगों को, इसलिए यहाँ बेटियों के मुंह में ये प्रश्न डाल दिया। समझे बात? बेटी यहाँ कथन का कौन निषेध कर रहा है? क्या कहा? कथन तो ऐसा ही होगा, उसका निषेध नहीं है। जिसके पास से हमें ये ज्ञान हुआ है उनके प्रति अति विनय भाव तो होना ही चाहिए, होता भी है। यदि विनय नहीं है, स्वच्छंद है, तो कहेंगे उसने वो तो अपनाया ही है, उसको वो मार्ग ख्याल में ही नहीं आया। हम तो गलत मान्यता का निषेध कर रहे, कथन का नहीं। लोग कथन में अप्लाई करना चाहते हैं, ये मान्यता उसके पीछे का अपना अभिप्राय क्या है उसकी बात चल रही है। कथन का निषेध नहीं, मान्यता का निषेध हो रहा है। कथन निमित्त की अपेक्षा किया जाता है क्योंकि ये पद्धति है, क्योंकि हर कार्य उपादान से होता है, तभी क्या बताना रह गया तो हम निमित्त की चर्चा करेंगे। तो कथन में तो निमित्त किससे ही कार्य होता है ऐसा उपचार से कहने में आता है, परंतु कार्य तो उपादान से होता है। उपादान का अर्थ क्या देखा था? द्रव्य की निज शक्ति। यह बात जानते हुए निमित्त का कथन करेंगे तो क्या कहते हैं? कार्य उपादान से ही होता है, यह बात यदि हमने जानी है, मानी है और हम ऐसा कथन करते हैं तो कोई बात नहीं। ज्ञानी के और अज्ञानी के कथन में कोई भेद नहीं दिखाई देता है। वो भी कहते हैं इन गुरु के कारण मुझे ज्ञान हुआ है, इनके मेरे पास उपकार है, अनंत उपकार है, और अज्ञानी कहते हैं कि गुरु से ज्ञान हो रहा है। तो दोनों के पीछे का अभिप्राय में अंतर है कि नहीं है? तो कहते यह बात जानते हुए निमित्त का कथन करेंगे तो वह योग्य होगा, परंतु यदि उपादान को मानेंगे ही नहीं और निमित्त को ही कार्य का कर्ता मानेंगे तो वह मिथ्या है। कथन में तो कोई अंतर नहीं है। ज्ञानी भी कुछ कार्य करते हुए दिखाई देता है, क्या कर रही हो माने किसी ने पूछा तो वो बताई मैं रोटी बना रही हूँ। बेचारे रोटी बना नहीं सकते ना, तो बना रही हो क्यों कह रही है? कथन ऐसा ही होगा, परंतु वो समय दृष्टि है महिला, तो क्या वो तो जान रही है ये कार्य तो आते में से अपने पर्याय की योग्यता से हो रहा है, परंतु कहेंगे क्या मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं रोटी बना रही हूँ, तो ऐसा नहीं कि ये हाथ से रोटी बेली जा रही है, ऐसा तो कथन नहीं होगा। कथन का यहाँ हमें कुछ कथन में उलट पुलट नहीं करना है। मान्यता अगर गलत है तो उसको सुधारना है। ये धर्म की शुरुआत तो मान्यता सही करने से ही होती है, और हम मान्यता तो वैसे ही गलत रखते हैं और कुछ क्रियाओं में सुधार करना चाहते हैं। ऐसा कर रहे थे अभी वो नहीं करना, या ऐसा करना, तो बस हमने धर्म किया ऐसा मानने लगते, पहले नहीं कर रहे थे अभी देव दर्शन करेंगे, कुछ स्वाध्याय में बैठेंगे थोड़े टाइम, और फिर और भी हमारे क्रियाएं चल रही है सामायिक वगैरह की वो भी कर रहे हैं, परंतु मिथ्या मान्यता वैसी है, तो कहते उससे कुछ लाभ नहीं है।
हाँ, जो कहा एक मिथ्या को एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अपना प्रतिको का अभिमान जो नाश होता है वो इसमें इसलिए वो मान्यता सुधारने को नहीं चाहता।
वही तो बात है, क्योंकि अभी तक मैं मान रहा था मैंने इतना सब कार्य किया, मैंने इतना एम्पायर खड़ा किया, मैंने यहाँ आया था तो कुछ नहीं था और देखो मैंने आज इतनी इससे खड़ी कर दी। कुछ भी हो या अन्य भी जो कुछ हो, मैंने इतना समाज का कार्य कर दिया, मैंने इतना मंदिर का कार्य किया, मैंने इतने शास्त्र देखो इतने छापे, हमने इतने लिखे, कितना हमने किया कि नहीं हमने किया कि नहीं, तो कहते उस समय की योग्यता से ये कार्य हुआ है। अपने में क्या हुआ? वो करने का भाव हुआ। तो कहेंगे अज्ञान अवस्था में उस भाव का कर्ता कहेंगे, शुभ भाव का, परंतु ज्ञानी तो जानता है कि वो भाव का भी मैं करता नहीं हूँ। तो मैं निमित्त तो हूँ ना, निमित्त तो हूँ ना, अपने उसका जो अपने को उसका श्रेय लेना चाहता है। निमित्त भले हो परंतु मैं निमित्त होना कहता रहता है, उसका अर्थ क्या है? मैं कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना, क्या ऐसा माना उसने? मैं निमित्त तो होना कहकर वो अपने कुछ तो कर्ता बुद्धि वहाँ प्रस्तुत करना चाहता है। अरे निमित्त है उसका अर्थ है कुछ नहीं किया है। तुम क्या ये मानने को हम तैयार है? हमने पूरा लाइफ लगाया इसमें, हमने इतना सब खड़ा कर दिया और आप हमको कोई पूछता भी नहीं है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? कोई सामाजिक कार्य हुआ, कोई बढ़िया कार्य हुआ और करने वाला पीछा लगता है उसका, जो कोई दूसरा ही आकर उसका सारा श्रेय लेना चाहता है कि इन्होंने किया, तो क्या मानता है? अरे मैंने इतना सब किया और अभी मुझे कोई पूछता नहीं है, ऐसा होता है कि नहीं होता?
यदि हम सोचे कि जो पांच द्रव्य है उसमें चार कारण तो आत्मा का खुद है।
हर एक द्रव्य का, केवल आत्मा का नहीं,
हर एक द्रव्य
का। ये तो उपादान शक्ति है, वो आगे चलकर लगाएंगे हम। चार जो समवाय उसमें स्व कौन है, पर कौन है, उसमें निमित्त कौन है, उपादान कौन है, उसकी चर्चा करेंगे। अभी तो एक एक जो समवाय में से एक एक कारण है उसको लेकर हम चर्चा करें। निमित्त की बात क्यों पीछे जाकर फिर ले रहे हैं? क्योंकि वो हम सीखकर बहुत दिन हुए ना, इसलिए निमित्त नाम का जो समवाय है उस संबंधी हमारी जो कुछ मान्यता है वो सही होनी चाहिए। निमित्त होता है, वो ज्ञान होने के लिए, ज्ञान करने के लिए उसको बताया भी जाता है, तो वो कार्य में कुछ भी नहीं करता, पर उसकी उपस्थिति होती ही है। परंतु चाहे जैसे निमित्त में, चाहे जैसा कार्य हो, ये बात नहीं हो सकती। कार्य जो हो रहा है उसके अनुकूलता का आरोप जिस पर आ रहे हैं, ख्याल में आती बात? ना हम उसको जुटा सकते हैं, ना हटा सकते, वो उस समय का निमित्त भी निश्चित है। और हम चाहते हैं हमको ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो दूसरा चाहिए, यानी हमने वो निमित्त भी नक्की करना चाह, ये अपनी मान्यता में पड़ा है सारा। देखो हमें तो ऐसे गुरु यानी विद्या गुरु मिले, एकांजी स्वामी के बारे में लिखा है कि उन्होंने बार बार कहा था, अरे जीवो तुम्हें जो यह ज्ञान हो रहा है वो तुम्हारे उपादान से हो रहा है, यह जो उपदेश यह वाणी है वह तो भाषा वर्गना का कार्य है, मैं उसका कर्ता नहीं हूँ। जिस गुरु ने 45-45 वर्ष उपदेश दिया था कि हे शिष्य गुरु से ज्ञान नहीं होता, तेरी निमित्ताधीन दृष्टि छोड़, दृष्टि यानी मान्यता छोड़, निमित्त से कार्य होता है, ये निमित्त के अधीन हुई ना दृष्टि, मान्यता क्या है? निमित्त के कारण, ये ऐसी मान्यता छोड़, इसको कहते हैं निमित्ताधीन दृष्टि छोड़। तू स्वयं स्वतः सिद्ध परमात्मा है, यानी वो बना बनाए नहीं, जब पर्याय में परमात्मा होगा तो बाद में बनेगा, अनादि से मैं हूँ। स्वतः सिद्ध, स्वयं भू भी नहीं कहा, भू यानी होने, उसको कुछ आदि है, हम कैसे? अनादि से, किस रूप से है? परमात्मा स्वरूप है, क्योंकि हम जीव द्रव्य है, तो जैसे सिद्धों का जीव द्रव्य है ऐसा मैं भी जीव द्रव्य हूँ, तो मैं स्वतः सिद्ध परमात्मा हूँ, बनना नहीं है, मैं हूँ ही। उसकी दृष्टि करेंगे तो पर्याय में भी हो जाएंगे, इतना सरल मार्ग है। तो कहते तू स्वयं स्वतः सिद्ध परमात्मा है, इस बात को नक्की कर, यानी उसका निर्णय हमें कहना है, उसकी कहेंगे अंदर से हाथों पाड़, स्वामी जी की भाषा में, ऐसा निर्णय कर। ऐसे गुरु के अनंत उपकार को स्मरण न करे वह शिष्य कैसा, यानी ऐसा कहने से मानने से स्वच्छंद नहीं होता है। लोगों के यही डर है, अगर ऐसा ही आप कहेंगे गुरु ने क्या किया, शिष्य के अपने ज्ञान के कारण हुआ, तो कोई गुरु का विनय नहीं करेगा तो स्वच्छंद हो जाएगी, स्वच्छंद नहीं होगी। यदि सही उपदेश ग्रहण हुआ है उसको, तो वहाँ स्वच्छंद हो ही नहीं सकता, क्योंकि मोक्ष जैसा महान जहाँ कार्य होने वाला है और उसके लिए जो निमित्त बने हैं ऐसे गुरु, तो उनके प्रति अहोभाव आए बिना नहीं रहेगा। देखो आगे के पृष्ठ पर आते, एक पैराग्राफ छोड़ दिया। यदि कोई कहेगा कि उसने पानी खत, हाँ 65
हमारे
66 से हाँ हाँ
पहले
यदि कोई कहेगा कि उसने पानी खत और धूप देकर वृक्ष बढ़ाया है तो क्या उसने बीज के बिना ही वृक्ष पैदा किया? वो किसमें से उत्पन्न हुआ है? वो बीज में शक्ति थी, वहाँ से वो उत्पन्न हुआ है। आम्र वृक्ष आम की गुठली बोने से उगेगा या नींबू के बीज बोने से? उस बीज में, यानी आम के बीज होता तो आम का वृक्ष, नींबू का हो तो नींबू का, करेला का होता उसमें से करेला का बनने का, विवक्षित वृक्ष बनने की निज शक्ति है। अब दूसरा एक दृष्टांत देखते हैं। शिक्षक से ज्ञान हुआ मानेंगे तो सब विद्यार्थियों को समान ज्ञान होना चाहिए था, परंतु कुछ विद्यार्थी फर्स्ट क्लास में उत्तीर्ण होते तो कोई ना पास होते। निमित्त से होता तो सबको बराबर होना चाहिए था, है ना? अब दूसरी एक महत्व की बात है, निमित्त भी तभी कहा जाता है जब कार्य होता है। हमने ऐसा सुना होगा, बहुत निमित्त मिले, बहुत निमित्त मिले, मैं क्या करे, हाँ मैंने ध्यान नहीं दिया तो कार्य नहीं है। क्या ये सही है? उसको निमित्त ही नहीं कहेंगे। जो कार्य हुआ है, क्या कार्य हुआ है कि हमने अध्यात्म के बारे में कुछ अभ्यास नहीं किया, ये कार्य, तो उसमें हम निमित्त मिले ऐसा नहीं कह सकते। कार्य हुआ ही नहीं है तो निमित्त कैसे कहेंगे? जो कार्य होता है, जो कोई कार्य हो रहा है, जैसे हमें क्रोध आया उसका कार्य हुआ तो उसमें हम निमित्त कहेंगे। कार्य हुआ ही नहीं तो उसको निमित्त कैसे कहेंगे? तो निमित्त ही तभी कहा जाता है जब कार्य होता है। बिना कार्य के निमित्त किसका? महावीर भगवान के जीव को सम्य दर्शन हुआ 10 पर्याय पहले, 10 भव पहले सिंह की पर्याय, तो निमित्त किसको कहा? वो चारण विद्धिधारी देव मुनियों को कहा। अब वही जीव मारीच के पर्याय में था तो आदिनाथ भगवान का निमित्त मिला था कि नहीं मिला था? नहीं मिला था,
नहीं मिला।
अरे ज्ञान कहाँ हुआ? तो निमित्त भी नहीं कहेंगे, ख्याल नहीं रहा। कार्य हुआ तो हम निमित्त कहेंगे, वहाँ तो उसने तो उल्टे पाखंडी मत की स्थापना की थी। क्या उस कार्य में हम आदिनाथ भगवान को निमित्त कहेंगे?
नहीं कहेंगे,
ख्याल नहीं रहा। एक क्योंकि हम लौकिक में बोलते कुछ और हमें तो बिल्कुल सिद्धांत को पकड़ के रखना था। हम ऐसे अपनी कल्पना से ये बोलते रहते, मारीची को आदिनाथ का निमित्त नहीं कहेंगे हम, ख्याल नहीं। जब उनको सम्य दर्शन रूपी कार्य हुआ तब हम उसमें निमित्त कहेंगे। यहाँ कार्य हुआ नहीं, कार्य कुछ अन्य हुआ, मिथ्या तो रहने का ही कार्य हुआ, तो मिथ्या दृष्टि ही रहे या और तीव्र उन्होंने मिथ्या तो के मत स्थापित किए, उसमें तो हम आदिनाथ भगवान को निमित्त नहीं कहेंगे, ख्याल में आई बात। तो निमित्त भी तभी कहा जाता है जब कार्य होता है। बिना कार्य के निमित्त किसका? वृक्ष अंकुरित ही हुआ तो पानी खत और धूप निमित्त किसके? विद्यार्थी विद्या ग्रहण करेगा तो ही शिक्षक पर आरोप आएगा कि इस शिक्षक से मुझे ज्ञान हुआ। आरोप अर्थात उपचार, ठीक है ना? वो जो हम कथन के लिए कथन करते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य करता है कहना, कहने की बात है, कहना औपचारिक कथन है, उपचार का कथन है, वह वास्तविक यानी यथार्थ कथन नहीं है, यानी वह रियलिटी का कथन नहीं है। इस प्रकार का कथन पढ़कर उसका यथार्थ अर्थ करना हमारी जिम्मेदारी है। इसको क्या कहते हैं? नयार्थ। किस नए से कथन किया है? तो कहते उपचरित नए से, यानी व्यवहार नए से किया। निमित्त के द्वारा कार्य हुआ ये कहना कैसा कथन है? निमित्त का कथन करने वाला है। दो द्रव्यों में एक दूसरे का कार्य किया है ऐसा जब जब कथन शास्त्र में भी आएगा उसको क्या कहेंगे? ये व्यवहार नए का कथन। कल हमने देखा था इसमें परमात्मा प्रकाश में शब्दार्थ है, शब्दशः क्या देखा हमने कि शिक्षक से मुझे ज्ञान हुआ, ये हमने शब्दशः अर्थ जाना। नए से जानना है तो कैसे जानेंगे कि ज्ञान तो शिष्य के ज्ञान के अपनी पर्याय की योग्यता से हुआ और शिक्षक उसमें निमित्त है, ये हमने उसका नए से अर्थ जाना। ये व्यवहार नए का कथन है और उसका सही अर्थ है। फिर उसमें मतार्थ लगाओ क्योंकि अन्य मति क्या समझते है, नहीं नहीं गुरु बिना, यानी गुरु ही सब कुछ कर देता है तो उसका खंडन हो जाता है। चल में आती बस। तो ये कहने के लिए, निमित्त को बताने के लिए, इस तरह से ये सभी अर्थ उसमें से निकाले। तो ये कथन पढ़कर उसका यथार्थ अर्थ करना हमारी जिम्मेदारी। देखो कोई भी शास्त्र वचन है, कोई भी अनुयोग ले लो आप, चार अनुयोग तो मालूम है ना रमेश भाई, कौन से? कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, प्रथमानुयोग। हाँ, चारों ही अनुयोगों में से वितरागता ही निकलती है। ऐसा नहीं कि ये अनुयोग हमें कार्यकारी ये बेकार का, कोई भी नहीं है, परंतु उसमें से वितरागता कैसे निकालनी है ये बात, ये हमारी जिम्मेदारी है। कोई भी गाथा हो, कोई भी अनुयोग हो, कोई भी ग्रंथ हो, उसमें से वितरागता की ही प्राप्ति होती है। और इसलिए ये हम सुनने की मुख्यता कहते हैं, क्योंकि पढ़ने में हम क्या करते हैं, अपनी कल्पना जो पहले रजिस्टर्ड है या कोई अंदर है पड़ी हुई, उसी के अपेक्षा हम उसका अर्थ लगाने की कोशिश करते हैं। इसलिए कथन की अपेक्षा हमेशा शुरुआत में कथन को मुख्य किया, इसको सुन ऐसा कहेंगे। सुनने को वो देशना कहा, देशना लब्धि सुनने को कहा, श्रवण को कहा है, पढ़ने को नहीं कहा। हाँ, पढ़ने से किसी को ज्ञान हुआ ऐसा हम कहेंगे, आध्यात्मिक जैसे श्रीमद जी है या रानी स्वामी है, समय सार ग्रंथ पढ़कर उनको ये हम कहेंगे उसमें से मूल वस्तु निकाली, परंतु उनके पूर्व की देशना थी तब वो निकालता। इसलिए सुनने की हमेशा ही मुख्यता। और ऐसा कभी नहीं कहना, नहीं मुझे यही अनुभव पढ़ना ये बेकार का है, इसमें से मुझे सब मिल, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये भगवान की वाणी है, वो सभी इक्वली इम्पोर्टेंट है। चारों ही अनुयोगों का हमें निर्णय तो होना ही चाहिए। और हम द्रव्यानुयोग ही पढ़ेंगे बाकी सब बेकार है, ऐसे कहने वाले भी होते हैं ना। आपने बोला ना ये भूगोल में से क्या हमको मिलेगा, यहाँ बात हुई थी ना आपके यहाँ, क्या नहीं, ये भूगोल पढ़ने से हमने जब शिविर लिया था तभी ऐसा है। कितने लोग, हमें तो आत्मा का कल्याण करना है, भूगोल जानने से क्या होगा। अभी सभी में सब कुछ है, ऐसा कोई भी अनुयोग बेकार नहीं है। ये हमारी अपनी कल्पना है कि हम इसको जानेंगे, ये इसको जानेंगे, इससे जानेंगे, यानी हम अपने ये निमित्तों को इकट्ठा करना चाहते हैं। मूल मान्यता अपनी जो है, उस मान्यता का यहाँ इलाज होना चाहिए, और वो सभी ग्रंथों में से होता है। हमें केवल उसका यानी जो ये जान लिया, ये जान लिया, ये जान लिया, ऐसा नहीं है। मान्यता में जहाँ जो कोई अपनी गलती चल रही है, हम शास्त्रों का अभ्यास ही इसलिए करते हैं कि हमारी मान्यता सही हो जाए, हमारे ज्ञान में कुछ भ्रामक कल्पनाएं चल रही है उसका निराकरण हो जाए, इसीलिए हम शास्त्र अभ्यास। और ये तो हरेक को अपना अभ्यास हुए, हम तो ये तो सैंपल को बताएंगे हम आपको, पूरा तो कोई भी ग्रंथ नहीं होगा भाई। हमें जरूर आकुलता होती है कि हमने इतना पढ़ा और पढ़े और पढ़े और पढ़े, परंतु ये तो कंटिन्यूएशन में रहना चाहिए। और जितना हम स्वयं अभ्यास करके निर्णय करें वही कार्यकारी है, और ये अपने जीवन का ही अंग बनाना है हमको। हम भी शुरुआत में ऐसे होता, कभी कभी शिविरों में जाते थे तो अभ्यास करते थे, और फिर लौट के आए तो हमारी रोजाना जिंदगी डिस्पेंसरी है, घर का काम है, बच्चों के स्कूल है, तो फिर वो तो स्लो डाउन होता था। फिर कभी शिविरों में ये आएंगे तो थोड़ा और आगे चलता था। परंतु जब तक हम अपने रोजिंदा जिंदगी का इसको अंग नहीं बनाएंगे, नहीं मुझे ये करना है, जैसे हम रोटी पकाए एक दिन छुट्टी देते क्या, आज कोई नहीं खाना खाएगा, ऐसा नहीं तो नहीं होता, क्योंकि वहाँ तो भूख लगती है और खाते भी है दो दो टाइम, ख्याल नहीं बात। ऐसे ही ये जो स्वाध्याय है वो अपना अंग बनाना चाहिए बिल्कुल, और स्वयं जितना स्वाध्याय करेंगे वही कार्यकारी। कोई भी ग्रंथ ले लो, शुरू से अंत तक पढ़ो। अभी तो हम इतने भाग्यशाली है कि ग्रंथों पर तो बिल्कुल उसका देखो, ये परमात्मा प्रकाश ओरिजिनल तो योगिंद्र देव ने लिखा ही लिखा है, फिर ब्रह्मदेव ने ब्रह्मदेव नाम के एक हो गए, उन्होंने संस्कृत निकाली, फिर उसकी हिंदी की दौलत राम जी ने ढूंढारी भाषा में उस पर टीका लिखी, इतनी बढ़िया है। और इन दोनों को लेते हुए स्वामी जी ने उनका प्रवचन, यानी अभी कोई भी ग्रंथ निकालो और उसका एकदम पीस पीस पर माल आपके हाथ में आया। पढ़कर जानना, जितना हो सके ग्रहण करना और उस पर तत्व निर्णय करना, उसी वो धुन चलनी चाहिए अंदर, तभी वो कार्यकारी है। क्योंकि इसमें क्या लिखा हमने जान लिया वो नहीं चलेगा, बार बार अपने कहां अभिप्राय में गलती हो रही है पर हम उसको कैसे सुधारे, ये मेरे जीवन में इसका कैसा, एक वाक्य भी लेते हैं और उसकी धुन लगाओ अंदर में तो वो कार्य कर। श्रीमद जी ने कहा ना कर विचार तो पाओ, ऐसा नहीं कर इतने ये लिस्ट से इतना बेस्ट हो। हाँ उन्होंने सजेस्ट किया कि ये गोमरसार भी आपको पढ़ने लायक है, ये भी पढ़ने लायक है, क्योंकि उस संबंधी अपनी जो कोई मिथ्या मान्यताएं चल रही है कर्म के संबंध में कहो या अन्य किसी दुनिया के तीन लोग के संबंध में, तो उसका निराकरण हो इतना तो हमें ज्ञान चाहिए, उतना तो आस्तिक के भाव चाहिए कि नहीं ये ऐसी चीजें ऐसी है, ये कोई कल्पना की बातें नहीं है। जिसको नहीं नहीं पुराणों में वो मराठी में कहा होते पुराना की वांगी, नहीं वो तो क्या है वो ग्रंथ में लिखा है इसलिए, पर हम नहीं मानते कि विश्व ऐसा, हम तो उसी को मानेंगे जो साइंटिस्ट ने बताया। यानी इसमें क्या सिद्ध होता है कि हमारे सर्वज्ञ के वाणी पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। जिसको सर्वज्ञ के वाणी पर विश्वास नहीं है क्या उसको अपने सर्वज्ञ स्वभाव का अनुभव हो सकता है? ये मूल बेसिक है। अभी हमें वो सही भाषित नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए, और पढ़ो और सर्वज्ञ के स्वरूप के बारे में विचार करो। जब तक सर्वज्ञ ही सही है 100% ऐसा भाषित नहीं होता है तब तक उनकी वाणी का विश्वास भी नहीं आया। तो देखे थे सही वो क्या कहते हैं, इसलिए कुछ जैसे हम अन्य स्टोरी पढ़ते हैं ऐसे ऐसा इसको पढ़ने जाए तो वो कुछ कार्यकारी नहीं है, क्योंकि ये अलौकिक मार्ग है। मोक्ष जैसा अलौकिक हमें फल मिलने वाला है तो उसके लिए उतनी ही दृढ़ता पूर्वक हम उसको अंगीकार करना चाहिए। जैसे मजे के लिए सुन लिया फिर छोड़ दिया ऐसा नहीं चलेगा। जैसे हम टाइम पास के लिए इंटरेस्ट जागृत हुआ इसलिए कोई टीवी सीरियल देखते कुछ ऐसा ये नहीं चलेगा। बिल्कुल उसमें डेडिकेशन श्रद्धा भाव पूर्वक उसको सुनना चाहिए। चलो अब आगे देखेंगे। ये तो चार घाती कर्मों का हमने बहुत बार देखा है।
हाँ
वो वही देखना है। देखो सारा कर्म सिद्धांत निमित्त की भाषा में, जीव ने कर्म को बांधा ये इतने बंधे होते हैं वो इतने काल रहते हैं फिर जीव को छोड़कर चले जाते हैं जीव को फल देते हैं, ये क्या है सब निमित्त की भाषा। जीव और कर्म दोनों का एक साथ कथन हो रहा है ना, कर्म ने जीव को फल दिया और जीव ने उस कर्म को भोगा है, जीव ने बांधा उसने जीव ने क्षय किया कि जीव ने कर्म बांधे। अरहंतों ने चार घाती कर्मों का नाश करके अरहंत चतुष्टय की प्राप्ति की, आठ कर्मों का नाश करके जीव सिद्ध गति प्राप्त करता है आदि कथन हम जिनागम में पढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं ना कि परमात्मा प्रकाशन सिद्ध किसको कहना, तो ये सब आठवीं कर्मों का इन्होंने नाश करके जो मुक्त हो गए। परंतु उन कथनों का मर्म न पहचानने से उसका रहस्य नहीं जान रहे हम, और सर्वथा वैसा मानने से, क्या कहा जैसा लिखा है बिल्कुल वैसा ही हम मानेंगे, ये तो निमित्त की अपेक्षा कहा उपचार है, परंतु हम उसको रियलिटी मानेंगे। मानने से निमित्त से कार्य होता है इस भ्रम की पुष्टि होती है। यानी जिनागम का अभ्यास करके भी ये भ्रम कायम रहता है क्योंकि निमित्त से ही कार्य होता है, मानने वाले भी जिनागम का अभ्यास कर रहे हैं और हम कहते हैं निमित्त से ये कार्य नहीं हो रहा है तो जिनागम निकाल निकाल कर बताते देखो यहाँ लिखा है ना जीव ने इतने कर्म बांधे इतने उसका नाश किया तब जाके ऐसा ऐसा हुआ। जिनागम निकाल कर ही उनके अपने मान्यता की पुष्टि करना चाहते तो उन्होंने जिनागम पढ़कर भी उल्टा अर्थ निकाला। उक्त कथनों का सही अर्थ इस तरह है जब जीव स्वयं मोह राग द्वेष रूप परिणमन करता है तब कारमान वर्गना स्वयं कर्म रूप परिणमित होकर पूर्वबद्ध कर्मों में आ मिलते हैं, उन्हीं प्रदेशों में पड़े हैं परंतु हम वो कर्म रूप हुए तो हम कहेंगे वो कर्म में आ मिले बंद होता है। और जीव निज शुद्धात्मा में लीनता द्वारा अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख और अनंत वीर्य प्रकट करके अरहंत परमात्मा बनता है तब चार घाती कर्म स्वयं की योग्यता से छिर कर नष्ट हो जाते हैं। नष्ट होते हैं कर्म से अकर्म रूप हो जाते हैं कर्मानुरूप हो जाते हैं। जीव जब पूर्ण शुद्धता रूप मोक्ष दशा प्रकट करता है, जीव ने अपने में प्रकट की जीव की अपनी पूरी परिपूर्ण शुद्ध दशा उसका मोक्ष है। और हम कहेंगे क्या, आठ कर्मों से रहित हुआ, तब सभी कर्मों का सर्वथा क्षय हो जाता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य कर नहीं सकता, बिगाड़ या सुधार कुछ भी कर नहीं सकता। यह जिनागम का सिद्धांत रूपी मंत्र सदाकाल ध्यान में रखोगी तो जिनागम का योग्य अर्थ और रहस्य समझ में आएगा। अभी उसमें बहुत सारे दृष्टांत भी दिए हैं। आपको मालूम है कि भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ कब हुआ था मालूम है क्या? वैशाख सुधी दसवीं को हुआ और उनकी दिव्य ध्वनि कब थी? दस दिन के बाद। हाँ तो गंग अंदर आए इसलिए खीरी की नहीं सुनिए ना, क्योंकि कोई पात्र नहीं था। हाँ
दो बात है, एक बात मैं कहते कि गौतम गंधर नहीं आया, जब गौतम गंधर नहीं आए इसके लिए उनकी वाणी नहीं थी। और दूसरा पक्ष ये भी कहता है कि उसकी वाणी नहीं छूट रही थी इसलिए गौतम गंधर वहाँ नहीं थे।
इसलिए नहीं थे कहना यानी क्या हुआ? ये दोनों कैसे है, निमित्त के कथन है परंतु उसको उन्होंने सर्वथा मान लिया। दोनों ही कथन में वही बात घटित होती है। तो वहाँ वाणी छूटी, उसका उपादान कौन है? गंधर्व के महावीर। क्या ये सही है मुकुंदन? बहुत अच्छा, महावीर भी उसके निमित्त है। भाषा वर्गना का, भाषा वर्गना शब्द रूप परिणमित हुई है तो उपादान कारण कौन है? भाषा वर्गना। तो भाषा वर्गना का अभी ज्ञान हुआ ना कि अभी कौन है गंधर्व आ गए, अभी मुझे शब्द रूप परिणमित होना है। समझ आई बात? महावीर का योगदान क्या रहा? हाँ उनका केवल ज्ञान तो था ही था, उनके योग जो है वचन योग उसका उसमें जो कुछ निमित्त बना वो भी निमित्त है। महावीर भगवान भी दिव्य ध्वनि में निमित्त है, वो उसके कर्ता नहीं है। वाणी क्या है? पुद्गल है। तो महावीर भगवान अपने ओंकार ध्वनि के कर्ता है कहना क्या होगा? उपचार कथन होगा, निमित्त का कथन। तो हम पूछते ना गंधर्व निमित्त है, गंधर्व उपादान है के महावीर उपादान है, तो महावीर को कह देते महावीर भगवान भी उपादान नहीं है, तो भाषा वर्गना उसका उपादान है। बिल्कुल, क्योंकि पुद्गल का कारण कौन होगा? पुद्गल होगा कि जीव होगा? भाषा वर्गना शब्द रूप परिणमित हुई। उपयोग तो त्रिकाल सर्व चीजों को उपयोग रूप ही जानते थे। भगवान का उपयोग अपने में था ये कहना गलत है, क्योंकि हम जो छद्मस्थ जीव है उसमें उपयोग इधर था या उधर था कहेंगे हम? केवल ज्ञानी सभी चीजों को उपयोग रूप ज्ञान में जान रहे। हमारा ज्ञान सूक्ष्म ज्ञानियों का ज्ञान कहता है लब्धि उपयोगो भावेन्द्रियम, लब्धि और उपयोग मिलकर ज्ञान की पर्याय होती है। मैंने ये उपयोग रूप हमारा उपयोग इधर लग रहा है परंतु उसी प्रकट ज्ञान की पर्याय में सब कुछ जान रहे हैं। एक बहुत बार बताया ना आपको कौन कौन सा ज्ञान है, मराठी का, हिंदी का है, रसोई का है, ड्राइविंग का है और भी जो कुछ है, आप जो अन्य अन्य चीजें करती सबका ज्ञान। उपयोग किस में अभी चल रहा है? शास्त्र साधन है ना। तो ये उपयोग रूप ज्ञान परंतु अभी वर्तमान पर्याय ये सब कुछ जान रही है। ज्ञान की पूरी पर्याय उपयोग और लब्धि मिलकर कहलाती है। उस पर्याय में है प्रकट है, शक्ति रूप की नहीं बात नहीं है, प्रकट है। जैसे हम आप सब पांचों इंद्रियों के द्वारा जानने की हमारी प्रकट शक्ति वर्तमान ज्ञान में है, क्योंकि हम क्या कहें ये संगी पंचेंद्रिय जीव है। परंतु एट ए टाइम उपयोग कौन से इंद्रियों के द्वारा, कितने इंद्रियों के द्वारा जान सकता है एट ए टाइम? एक। तो इतना फास्ट उसमें पांचों इंद्रियों में उपयोग टर्न होता है कि हमें लगता है कि हम सभी कार्य एक साथ कर रहे हैं। देखो हम सुन भी रहे, आपको देख भी रहे, पंखे की हवा भी ले रहे है ना, और कभी कभी वो टीवी के सामने बैठकर भोजन भी कर रहे, तो सभी पांचों इंद्रियों का कार्य चल रहा है कि नहीं एट ए टाइम? लेकिन नहीं। आपने वो देखा होगा, वो फिल्म चलती है ना आपकी रील, उसके एक 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 तो फिल्म अलग अलग है, उसको इतना फास्ट घुमाते हैं, वो कंटिन्यूएशन लगती है। अंधेरे में आप ऐसे अगरबत्ती लेके घुमाओ तो क्या दिखेगा, पूरा सर्कल है, तो एक पॉइंट जलता हुआ तो पूरा सर्कल दिख रहा है वो फ्लेम वाला। क्यों? झड़प से होता है। ऐसे ही यहाँ इतना झड़प से उपयोग ये पांचों इंद्रियों में टर्न होता है, हमें ऐसा लगता है कि हम सभी एक एट ए टाइम जा रहे हैं, सब इम्प्रेशन रहता है ना, जिसको हम यहाँ संस्कार कहेंगे ज्ञान में। ये सारा साइंटिफिक है, हमें क्या। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
अभी हमने देखा कि हमारा उपयोग पांचों इंद्रियों के द्वारा फिरता है, लेकिन एक उपयोग एक अंतर मुहूर्त तक जब तक हम उसमें नहीं लगाते हमारे ज्ञान का विषय नहीं होता है। तो अभी हमने देखा कि टीवी देखते वक्त तो हम तो पांचों इंद्रियों का भोग ले रहे हैं, वैसा नहीं है, एक ही इंद्रियों का भोग ले रहे हैं। हमें देखना है तो मान लो कि अपने घर में बच्चे हैं वो टीवी देख रहे हैं और हम उनको बुलाए, चलो बेटा खाना खाने को चलो झलझ, तो उसका उपयोग देखने में लगाए तो सुनेगा नहीं। यानी यहाँ मुझे ये बताना है कि एक उपयोग एक अंतर मुहूर्त तक चलता ही चलता है, तो एक समय कितना सूक्ष्म है ये हमें समझना है। यानी जो कोई हम तत्व की बात पढ़ते हैं सुनते हैं तो उसमें सब एंगल से हम पढ़ेंगे समझेंगे तो अपना ज्ञान का विशेष ख्याल हो जाता है, उगाड़ हो जाता है।
समझ में बस कि अंतर मुहूर्त वो कितना छोटा होगा कि हमें उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। कि आप हम से जान रहे थे, अब हम अन्य इंद्रियों के द्वारा अभी सुन रहे हैं, तो अंतर्मूर्त तक आंखों से देखा, फिर अंतर्मूर्त तक सुना, फिर अंतर्मूर्त तक अन्य इंद्रियों के द्वारा जाना, तो ये जो घूमना होता है वो भी अंतर्मूर्त के बाद होता है। तो ये अंतर्मूर्त कितना छोटा है जो हमारे ख्याल में भी नहीं आ रहा है।
अभी आपने जो बताया
उद्योग
और हो सके जो आए अभी थोड़ा सा और उसी पर 50,000 घंटा होगा।
हाँ देखो,
और बात ऐसी है कि जिससे हम एक व्यक्ति का विचार करते हैं, प्रयत्न करते हैं कि हम उसी का विचार करते रहे तो दूसरा विचार न तो भी आते तो है, और हम प्रयत्न करते हैं कि हम उसी वस्तु पर वापिस जावे, तो ये सब सारी चीजें की आप उनको थोड़ा डिस्कस करें तो हमें और लाभ हो सकता।
देखो ये जो सूक्ष्म ज्ञान है तो उसकी विशेष सूक्ष्म ज्ञान किसको है? जो सर्वज्ञ नहीं है, जो केवल ज्ञान नहीं है, वो सारे कैसे हैं? तो सूक्ष्म ज्ञान कौन से है? मति ज्ञान, चित्त ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपरे ज्ञान, ये सारे यानी सूक्ष्म ज्ञान। और जो केवल ज्ञान है वो क्षायिक ज्ञान है, और सूक्ष्म की परिभाषा में नहीं जानते, ये अल्प ज्ञान है सारे। इसकी विशेषता क्या है कि वो लब्धि और मिलकर, लब्धि और उपयोग मिलकर इस ज्ञान की पर्याय होती है। ज्ञान की पर्याय जानने रूप चल रही है, उसमें भी दो भेद किए, कैसे? उपयोग रूप और लब्धि रूप। क्योंकि सूक्ष्म ज्ञानी हम ऐसे हैं कि एक चीज को देख रहे तो इसका ज्ञान नहीं हो रहा है, आंखों से जान रहे तो सुनाई नहीं दे रहे उस अंतर्मुख को, अभी सुनाई नहीं देता ऐसे हम कहते हैं, परंतु वो तो फास्ट फास्ट होता है इसलिए फिर हम सुनते भी ऐसा हमें लगता है। तो ये जो ज्ञान की पर्याय है कौन सी? उपयोग और लब्धि मिलकर। तो इसमें से लब्धि से क्या प्रयोजन है, क्या है? तो जो हमारा देखो, हम आपने सुना होगा कि एट ए टाइम किसी जीव को कितने ज्ञान होते हैं, ज्ञान पूरे पूछे उपयोग नहीं, क्योंकि नहीं ये चार ज्ञान कौन से? मति ज्ञान, चित्त ज्ञान, अधिज्ञान, मनपरे। कोई मुनिराज है उनको चार ज्ञान के धारी कहते हैं। आपने सुना होगा गणधर जो होते हैं वो तो चार ज्ञान के धारी होते ही नियम से, तीर्थंकर का जीव जब दीक्षा लेता है तो चार ज्ञान का धारी होता ही होता है। तो चार ज्ञान का धारी कहेंगे हम तो क्या उपयोग चार ज्ञानों का एट ए टाइम चलेगा? तो उनकी पर्याय में चार ज्ञान चल रहे, वर्तमान पर्याय में उघाड़ रूप प्रकट रूप चार ज्ञान, परंतु उपयोग रूप एक ज्ञान है। अभी मति ज्ञान में उपयोग है, तो मति ज्ञान किसको कहना? पांच इंद्रियों और मन के द्वारा जो जान रहे वो मति ज्ञान है। तो उस मति ज्ञान में भी उपयोग किस में चलेगा? या तो देखने में या सुनने में, या सुनने में जो कुछ हम पांचों इंद्रियों और मन की बात करेंगे। तो ये हुआ उपयोग। तो उस उपयोग होते हुए बाकी सब ज्ञान उसमें कंटिन्यूशन है कि नहीं है? जब हम देखने की बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, तभी ये जो बातें सुन रही थी हमने, जो सुनकर अभी हम देखने के प्रति उपयोग चला गया, तो ये सुनने की बात अपने ज्ञान में चल रही कि नहीं? उस प्रकट ज्ञान में हम जब शब्द बोलते हैं, जैसे स्कूल में हम सीखते ना, राम ने आम खाया, एक एक शब्द हमने अलग अलग, यानी उस बीच में कुछ गैप चला कि नहीं? तो पूरे वाक्य का अर्थ भाषित हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है ना। वो जो कुछ हमने पहला जो शब्द बोला था उसका भी हमें यहाँ रजिस्ट्रेशन चल रहा है, वो प्रकट ज्ञान के पर्याय में चल रहा है। नहीं तो हम जितना सुने हैं और पीछे का सब चौपट हो जाएगा। हम यहाँ जो स्वाध्याय करते हैं, तो जो जो हमने सुना है वो सब अपने ख्याल में है कि नहीं? वर्तमान पर्याय में चल रहा है वो। आपका जो प्रश्न था कि हम कोई विचार करते हैं और दूसरे विचार पर जाते हैं, चला जाता है उपयोग
करके और साइड में से
आके, हाँ, कोई विचार चल रहा है हमारा, हम स्वाध्याय का कोई विचार कर रहे हैं, तो अचानक कोई दूसरा विकल्प मन में कहाँ से आ जाता है पता नहीं, हम नहीं चाहते तो भी आता है। क्यों आता है? क्योंकि ज्ञान की वैसी पर्याय की योग्यता से वो आता है और हम उसको नहीं चाहते, यही बात है ना? यानी ये हम उपयोग को एक तरह कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं और हम चाहे हम इच्छा से विकल्प लाना चाहते हैं।
इच्छा से नहीं, मेरा उपयोग चल रहे, एक वस्तु का विचार चल रहे हैं और जो बाकी के जो वो पड़े हैं उसमें से क्या क्या जो चीज आती है वो आके
सामने प्रस्तुत हो जाती है,
होती है। और हमने तो जो करना चाहते हैं इसमें डिस्टर्बेंस है ये मालूम हो जाए, तो उसकी तरफ से ध्यान निकाल के जो वस्तु का विचार उसी पर वापिस जाना चाहते हैं।
हाँ, ये चाहते हैं। हाँ। चाहते नहीं, इच्छा हो रही है। इच्छा यानी चारित्र गुण का विभाव चल रहा है। इच्छा करे, चारित्र गुण का विभाव करे और ज्ञान उस रूप परिणमे, ऐसा हम चाहते हैं। ये हमारी कहीं तो मान्यता में खोट है। अच्छा। ही बात
तो
स्वीकारने की बात नहीं है हमारे, क्योंकि ज्ञान का ऐसा स्वभाव है उपयोग वहीं पर चला जाता है जहाँ वो रुचि है। कोई इसका कंटाला आया तो उधर चला गया, ऐसा हम कुछ भी उसका नाम दे दो, परंतु ज्ञान की हर पर्याय अपनी योग्यता से हो रही है। हम विचार कर रहे हैं, अभी हम निमित्त उपादान की जो चर्चा कर रहे हैं उस संबंधी हम निर्णय तक पहुंचने की कोशिश करना है। हम क्या कर रहे हैं? हम तो किसी को हटाना है, किसी विचार पर हम स्थिर होना चाहते हैं। हमें किस पर स्थिर होना है? अपने त्रिकाली स्वभाव पर। जानन स्वभाव मेरा है, हम किसी विचार पर स्थिर होना चाहते हैं। विचार तो क्या, विकल्प आता है चला जाता है, विकल्प कायमी चीज नहीं, और विकल्प करते करते आत्मा का अनुभव नहीं होगा। विकल्प भले आएंगे परंतु यहाँ तो ये बात इसमें आएगी परमात्मा प्रकाश, अभी तो मंगलाचरण चल रहा है, इसके आगे इतनी गहरी बात है, इतनी सुंदर है कि यहाँ तो जो वितराग अपना स्वभाव है, निर्विकल स्वभाव ही वैसा है, और उस स्वभाव ये सारे निर्णय की बात तो अभी हम इसमें पढ़ रहे हैं, कारण कार्यदर्श, ये सारे जो वस्तु व्यवस्था के निर्णय होते चले जाएंगे जैसे जैसे, तब तो विचार करते करते वो निर्णय के प्रति पहुंचेंगे, और फिर यहाँ जो बताए हुए वितराग निर्विकल्प जैसा हमारा कायमी स्वभाव है उसको लक्ष्य में लेंगे तो विकल्प की तो हम आती ही नहीं है, विकल्प छूट जाते हैं। और हम ध्यान के नाम पर कुछ विकल्प करना चाहते हैं, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं वैसा हूँ, कहते आपने जान लिया तो अभी विकल्प की क्या जरूरत है? डाइनिंग टेबल पर बैठे सामने आम रस पड़ा है, हाँ, रखा है, तो क्या क्या कहते हो रमेश भाई? ये पीला है, ये मीठा है, ये सुंदर है, ये हाँ, खाने से इतनी तृप्ति होती है, सुगंधित है, क्या क्या बोलते हो? कुछ नहीं बोलते, क्या करते हैं? मुंह में रखते ही उसका स्वाद से हम तृप्त हो जाते हैं। और यहाँ तो ये निर्णय करने तक ये विकल्पों की जरूरत थी, हम उन विकल्पों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम है ना ऐसे शांत स्वरूप है, बस शांत स्वरूप में उसको जानते रहो ना, वो नहीं जान रहे। तो मैं शांत स्वरूप है, मैं ऐसा हूँ, मैं निर्विकल्प हूँ, और मैं क्या है, राग से रही हूँ, शरीर से रही हूँ, मैं इतना अनंत गुणों का, हाँ ये सब हाँ अपन कभी जब हमने कभी सुना नहीं था तब, अब सुन लिया ना, हाँ सुना, निर्णय हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो अभी विकल्पों की क्या जरूरत है आपको, अभी आत्मा को जानने स्थिर हो जाओ ना अंदर में, तो वो नहीं होता है। और विकल्प उठाना चाहता है, और फिर एक विकल्प उठा कितने काल तक टिकेगा, दूसरा कोई इधर उधर से आता है, हम उसको नहीं चाहते। ये कहाँ कहीं ना कहीं अभिप्राय में अपनी गलत बात पड़ी, भ्रमणा पड़ी, क्योंकि ये ध्यान के नाम पर भी ये निर्विकल्प ध्यान की सविकल्प ध्यान की यहाँ बात आएगी। कल पढ़ा था ना वो पिंडस्थ पदस्थ वगैरह अपना हुआ ना, ये रूपातीत ध्यान जो है ना, अपनी निर्विकल्प अनुभूति। अब ये तो यहाँ तो शुरुआत है, अभी वो सिद्धों की बात, अभी यहाँ तो मंगलाचरण में सिद्धों को नमस्कार किया है, पंचपरमेश्वरों को किया है, आगे जितनी आगे बात बढ़ेगी, कितना सुंदर है ये ग्रंथ। कोई भी निकालो, अभी कोई भी ग्रंथ, मैंने बताया ना कोई भी ग्रंथ निकालो, जितने हम उसके डिटेल में उसके विस्तार में चले जाएंगे उतना हमें निर्णय तक पहुंचने के लिए कार्यकारी। और जब हम उसको सुन रहे हैं तो हम दुनिया में किसने क्या कहा उसे राग द्वेष के परिणाम होते कि नहीं होते हैं, जब हम शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं उस काल में हम उसको जानने में इंग्रॉस, तब दुनिया की कोई चीजें याद नहीं आ रही है। उतने काल तक हम भले वो मंद कषाय होकर वहाँ सुन रहे हैं, और सुनने से हमारे ज्ञान में जो कुछ नहीं जान रहे थे वो जान रहे हैं। जानने का फल क्या है, हितराक्षा तो जब आएगी, जाना ये यहाँ हमने आपको बताया, ये जाना आपने, या कोई चीज थी आपने जानी, तो जानने का फल क्या है, फायदा क्या है, अरे अज्ञान उस संबंधी अज्ञान का नाश हुआ, यही जानने का फल है। हम जानने का फल कुछ और चाहते हैं, अज्ञान का नाश हुआ ना, वस्तु स्वरूप को जान नहीं रहे थे, उसका वो हमारा अज्ञान था, वो उसका नाश हुआ। अभी तक हाँ, अभी हम नहीं जानते थे कि कार्य में 5 समवाय लगते हैं, हमने जान लिया वहाँ 5 समवाय होते हैं, तो हमारा जो अज्ञान था वो नष्ट हुआ। अभी हम नक्की जान रहे कि वहाँ 5 समवाय होते ही है, और वो सहज रूप से उपस्थित होते हैं, ना हमें लाने के लिए चिंता है। यहाँ तो कोई सब चीज समस्या होती है ना, तो आपको वो मॉल में जाना है, ये लाना है, वो लाना है, वो लाना है, हम आटा लाना है और क्या क्या सब्जी लानी है, ऐसे ये कारणों को लाना पड़ता है क्या, समझ आई ना भाई? भाई क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर, अभी हम निमित्त के बारे में पढ़ रहे हैं, तो निमित्त के बारे में जो पढ़ रहे हैं, तो हमारा उस संबंधी जो अज्ञान था वो अज्ञान का नाश होना ही ये इसका फल है। हम फल में और कुछ चाहते हैं, है ना, इसका क्या फायदा, इसका क्या फायदा, अरे फायदा तो हो रहा है कि हमारा अज्ञान का नाश हो रहा है। ये भूगोल की बात होगी या कोई भी ग्रंथ ले लो, उस संबंधी हम नहीं जानते थे वो हम जानने लगे, तो ये जानने से हमारे पास ज्ञान ही ऐसा साधन है, उस ज्ञान के द्वारा ही हम स्व क्या है, पर को क्या है वो जानेंगे, ज्ञान के द्वारा ही हम सही बात को जानेंगे, ज्ञान के द्वारा ही तत्व का निर्णय होगा कि देव कौन है, गुरु कौन है, शास्त्र कैसे होते हैं, ये कौन निर्णय कर रहा है, ज्ञान निर्णय कर रहा है। तो ज्ञान से ही, ज्ञान ने बताया ये से स्व और ये सु जो अभी तक शरीर को अपना मान रहा था ये पर है, तो ज्ञान को ही अपने को ही जानता रहेगा तो क्या होगा, आत्मा की अनुभूति होगी, किसमें तो ज्ञान में ही होगी। तो ज्ञान ऐसा हमारे पास ऐसा प्रबल कारण है, ऐसा जो कुछ साधन है कि उसके द्वारा सब कुछ हो रहा है, यानी हमें कोई चिंता की बात नहीं है, समझ ना। तो पहले हम जिनागम का अभ्यास क्यों करना, सही जानने के लिए, तो ज्ञान ने जान लिया। अभी जब हम द्रव्यान योग में सीखते हैं कि स्व क्या है, पर क्या है, वो जानने ज्ञान ने ही नक्की किया, फिर ज्ञान ही वो भेद विज्ञान करेगा, ये मैं हूँ और ये सारा पर है, और ज्ञान में ही उसको अपने को जानते रहना, उपयोग में अपने को ही लेना है। हमने इसके तरफ उपयोग किया तो ये जानने में आ गया, और अपने स्व की तरफ उपयोग करेंगे तो हम स्व जानने में आएगा। हम किस में रुके हैं? विकल्प करने में। विकल्प आते हैं, उसके ना नहीं है, परंतु अंदर अभिप्राय में रखना है, मैं कोई पर्टिकुलर विकल्प करना चाहता हूँ, अभिप्राय में है ना। हम दूसरा विकल्प बीच में नहीं चाहते हैं, हम एक पर्टिकुलर विकल्प चाहते हैं, क्योंकि विकल्प से नहीं होने वाला ये बात। विकल्प से क्या होगा? ये गोल गोल घूम रहा है, ऐसा गोल गोल घूम रहा है, और सेंटर को पहुंचना है। कब पहुंचेगा? पहुंचेगा ही। तो हमें अपने निर्विकल्प जो अपना वितराग स्वभाव है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। वो कैसे होगा? तत्व निर्णय से। जब तक कहीं भी कचा से अभिप्राय में, तब तक उसको पकड़ वो पकड़ में नहीं आएगा। तो ये हम इतना अभ्यास क्यों करते हैं बारंबार सभी अनुयोगों का? तो अपने अभिप्रायों की कहीं पर भी थोड़ी भी भूल है वो निकलनी चाहिए। देखो अभी हम यहाँ देखेंगे, अब ये निमित्त में भी दो प्रकार बताएंगे। क्या कहा? निमित्त हमने देखे, निमित्त होता है उसमें भी दो टाइप बताएंगे, अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त। तो अंतरंग किसे कहना और बहिरंग किसे कहना आपको याद है? हुकुम भाई पहले हमने देखा था इसको, अंतरंग और बहिरंग। आप क्या कहेंगे?
बहिरंग जो बाहर में जो उपस्थित दिखाई देता
है वो बहिरंग, और अंतरंग
जो तत्व की व्यवस्था है उसमें जीव होता है उसको
अंतरंग। ये जुड़ता वगैरह भाषा बराबर नहीं है। अगर कर्म को ही हम अंतरंग निमित्त मानेंगे तो जीव और पुद्गल जब गमन करते हैं, गति करते हैं, तो उसमें कौन निमित्त है?
गति
गति करते हैं तो उसमें निमित्त कौन है?
धर्मास्तिका।
हाँ, धर्मास्तिका। क्या वो कर्म है?
कर्म नहीं,
नहीं है। तो वो नियम रूप निमित्त है, उसको अंतरंग निमित्त कहते हैं। जो 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 नियम रूप निमित्त है, जब जब यहाँ जीव किया कर्म की गमन रूप क्रिया चलेगी तो होगा ही निमित्त, ऐसा कौन सा है? तो कहते धर्म द्रव्य, धर्मास्तिका। तो धर्मास्तिका को क्या कहेंगे? अंतरंग निमित्त। किसमें? जीव और पुद्गल के गमन करने, और गमन करते हुए जीव रुके, वो अंतरंग निमित्त। बहिरंग निमित्त क्या कहेंगे हम? अभी कोई कार चला के जा रहा है, वो कार अपनी क्रियावती शक्ति से, वो उपादान है, उसका निमित्त नहीं लेना। और जीव अपनी शक्ति से जा रहा है, अपने उपादान से जा रहे हैं। हाँ, जीव और वो पुद्गल दोनों अपने उपादान से जा रहे हैं। जा रहे कौन? धर्मांशिकाए निमित्त है, बराबर है। और वो रुके तो निमित्त कौन है? अधर्मांशिकाए। उसको क्या कहेंगे? अंतरंग निमित्त। बाह्य में निमित्त क्या है? वो रेड सिग्नल आ गया। बहिरंग निमित्त तो वेरिएबल निमित्त होते हैं। ये क्यों रुका? कि सामने से कोई आदमी पेडेस्ट्रियन जा रहा था, वो रुका। या क्यों रुका? क्योंकि हो सकता है उसका जो कुछ कार का कुछ फेल हो गया, इसलिए रुका। तो ये जो रुकने के जो बाह्य कारण है वो तो वेरिएबल होते हैं, उनको क्या कहेंगे? बहिरंग निमित्त। जब जब गति करते हुए रुका तो नियम रूप कारण कौन सा है? अधर्मास्तिका है। वो क्या है? अंतरंग निमित्त। समझ में है ना डिफरेंस? अब जब हम जीव और कर्म की बात करते हैं तो उसमें कर्म को ही हम अंतरंग निमित्त कह देते हैं, क्योंकि वो वहाँ होता ही है। जैसे जीव को क्रोध हुआ, क्यों हुआ? उसके अपने अशुद्ध उपादान से हुआ, ये उपादान हुआ। निमित्त में देखते हैं, निमित्त में क्या है? क्रोध हो रहा है। नियम रूप निमित्त क्या है? क्रोध कर्म का उदय, चारित्रम होने योग कर्म है, क्रोध कर्म का उदय। वो नियम रूप होता ही वहाँ, क्योंकि यहाँ क्रोध चल रहा है वहाँ क्रोध का ही उदय है, जहाँ मान चलता है वहाँ मान का ही उदय है। हमने देखा था कि सारे परमाणु पड़े हैं, जो भाव करेगा उसका उदय चलेगा। बहिरंग निमित्त क्या है, यानी वेरिएबल निमित्त क्यों क्रोध हुआ, तो हमारे पड़ोसी ने हमको तकलीफ दी, ये हो सकता है। क्यों क्रोध हुआ कि हम चाहते कुछ थे और अभी इंडिया में क्या होता है, बिजली चली जाती है और हम सब कुछ कुकिंग करना चाहते थे और कुछ नहीं कर सकते, तो हमको क्रोध हुआ। हम कुछ चाहते हैं या कुछ बच्चों को बता दिया, उन्होंने नहीं माना, तो हमको क्रोध हुआ। ये बाह्य निमित्त कैसे वेरिएबल है, उसको क्या कहेंगे, बहिरंग निमित्त। ये निमित्त भी अनेक प्रकार के होते हैं एट ए टाइम। ये कर्म का तो निमित्त दिखाई नहीं देता, निमित्त कौन, बाह्य के ही बहिरंग निमित्त दिखाई देते हैं। तो जिसके कारण हमको क्रोध आया उसके प्रति हम और क्रोध करते हैं, है ना। परंतु सच्चा निमित्त भी देखना है तो कौन है वहाँ पर अंतरंग, वो तो क्रोध कर्म का हो गया। वो भी क्यों हो रहा, जीव स्वयं करता है तब उसको आरोप आता है, यानी सच में बाद में एक्चुअल में कहाँ पर जाना है, हमको क्रोध क्यों हुआ, अपने कारण हुआ। पहले इसको एक्सेप्ट तो करेंगे, फिर उसका ज्ञान कराया जाता है कि क्यों क्रोध हुआ उसको, ये ऐसा कहना था, ये इसने ऐसा करना था मगर वो नहीं किया तो हमको क्रोध आया। लौकिक में तो हम ऐसी बातें करेंगे, लौकिक में तो उसका उपचार भी होगा, परंतु मूल में हमें ये सिद्धांत तो सीखने हैं, तो ये अंतरंग और बहिरंग निमित्त कौन है वो बताना है यहाँ पर। अब हर कार्य में लगाना, एक होता है नियम रूप निमित्त और एक होता है वेरिएबल निमित्त। तो नियम रूप है उसको अंतरंग कहेंगे और वेरिएबल है उसको बहिरंग कहेंगे। एक मिनट में हम सम्यक दर्शन पर घटित करके देखेंगे। अब यह कोई अनादि का मिथ्या दृष्टि है और उसको सम्यक दर्शन हुआ, उसको कहेंगे औक्षमिक सम्यक दर्शन। तो औक्षमिक सम्यक दर्शन जब जब हो रहा है तो उसका नियम रूप निमित्त क्या है, तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी जो कर्म है उसका उपशम हुआ है। औक्षमिक सम्यक की बात करते इसे हम उपशम कहा, उसके डिटेल में औक्षम और क्षय की बात नहीं करेंगे हम, एक उदाहरण लेना है हमको। ये तो उसका कर्मों में कौन सा वो नियम रूप हो, चाहे वो देवगति का जीव हो, नारकी हो, मनुष्य हो, तिर्यंच हो, जब जब यहाँ औक्षमिक सम्यक दर्शन हो रहा है तब कर्मों में क्या अवस्था है, उन कर्मों का उपशम चल रहा है मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का, ये नियम रूप हो गया ना। अभी हम बाह्य निमित्तों की चर्चा करते हैं, तो देवों में सम्यक दर्शन होने के कारण क्या है, तो कहते हैं रिद्धि का दर्शन, वहाँ जीव ने जन्म लिया, ये वैभव क्या है, किसका फल है, तो वो विचार करता है, और भले मिथ्यात्व अवस्था में भी गया हो तो वहाँ सम्यक दर्शन भी प्राप्त करता है, बाह्य वैभव का देखना। या पंचकल्याणकों में आते हैं, तो पंचकल्याणकों में वो सारा भगवान की उसकी वाणी सुनते हैं या भगवान को देखते भी है, जिनेन्द्र भगवान को देखते हैं और फिर उनको विचार करते हैं, वहाँ सम्यक दर्शन होता है। अब हम नारकियों की बात करें, नारकियों में तो कोई जिनबिंब दर्शन वगैरह तो कोई बात नहीं है, हाँ उसमें ये हो सकता है कि उपदेश देव जाके उपदेश देते हैं तीसरे नरक तक, वो हो सकता है। नीचे के नरकों में तो वो भी नहीं मिलते हैं, तो वहाँ इतनी तीव्र वेदना है और इतनी प्रतिकूलता है बाह्य में, तो उस परिस्थिति में जीव विचार करता है ऐसा क्यों, तो उसको पूर्व भोग की वो सुना हुआ उसका एहसास होता है, वो तत्वों का भाव भाषण होता है और फिर वो अंतर्मुख परिणाम में वहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। मनुष्यों में तो शास्त्र श्रवण है, कोई ग्रंथों का पढ़ना है, जिनेन्द्र भगवान के दर्शन है, उपदेश है, बहुत सारे निमित्त ऐसे हैं। तो बाह्य में ये जो वेरिएबल निमित्त है उसको बहिरंग निमित्त कहेंगे, और जो नियम रूप निमित्त उस कार्य में सदा काल में और जब जब जिस किसी के होता है उसको होता है उसको हम अंतरंग निमित्त कहेंगे। तो निमित्त बहिरंग हो या अंतरंग वो कार्य में कुछ नहीं करता, ये पहले में पहले नक्की करना है, परंतु वो होता है। तो अनेक निमित्त भी हो गए, पांच समवायों में हमने एक समवाय निमित्त का कहा, परंतु वो निमित्त भी एक नहीं होकर अनेक हो सकते हैं, इसकी और चर्चा बाद में करेंगे हम। बोलो चौबीसो भगवान की।